Om Shanti. इमली 18 फरवरी 94। सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। ताज तख्त और तिलक की स्मृति दिलाकर फरिश्ते स्वरूप में स्थित कराने वाले अकाल मूर्त बाप दादा अपने अकाल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्त धारी विश्व कल्याण के ताज धारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलक धारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्त धारी भी है, ताज धारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो तख्त पर बैठते हो तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। तो बाबा तख्तधारी ताजधारी और तिलकधारी आत्माओं को देख रहे हैं। ताज कौन सा? कौन सा ताज? पवित्रता का ताज और विश्व कल्याण का ताज, विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज, तख्त आत्मा का काल तख्त और दिल तख्त। तिलक कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक, समान का तिलक, याद का तिलक। तो जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो तख्त पर बैठते हो तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। तो जब ताज तख्त और तिलक है तो स्थिति श्रेष्ठ है और यह स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृद्धि, बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जोड़ने वाला फरिश्ता अर्थात डबल लाइट देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाले फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव निर्माण भाव और सर्वप्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला ऐसे फरिश्ते हो ना? पलक से कहो। क्या कहो? हम नहीं होंगे तो कौन होंगे? पलक है ना? तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। एक नहीं देखता है वो, सब, जिसमें ये सारे ही गुण हो, जो ताज तख्त और तिलकधारी है, उनकी सूरत फरिश्ता सूरत है, वो परमात्मा संदेश वाहक है, बेहद में रहने वाले हैं, असीम में रहने वाले हैं, हदों में नहीं आते, दृष्टि भी बेहद और वृत्ति भी बेहद और स्थिति भी बेहद, सदा उड़ती कला और सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाले, क्योंकि उनका खुद का रिश्ता केवल एक बाप से जुटा है। डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा और हल्का फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा पाप समान बनाने वाला, सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाले, निमित्त भाव निर्मल स्वभाव और सर्वप्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। तो ये सब फरिश्ते की परिभाषा यहाँ बाबा ने दी है। फरिश्ता वह व्यक्ति है जो हदों से ऊपर उठ गया है। फरिश्ता वह मन की स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं है। फरिश्ता चेतना की वह उच्चतम, चेतना का वह उच्चतम स्तर है जहां पर अंधकार सब समाप्त हो गया है। घृणा ईर्ष्या द्वेष हटकर वहां पर सर्वप्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना आ गई। उस उच्चतम स्तर पर आत्मा को ले जाना वह फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जिसका इस तरह से देह है, जिस तरह से चित्र में दिखाते हैं। फरिश्ता मन की स्थिति है। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी समान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देहभान समाप्त करने के संसार में लोगों ने कई साधन निकाले आज तक, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। आत्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में भी है, फरिश्तों का ज्ञान यहूदी इस्लाम और ईसाई धर्म में भी है, परंतु फरिश्ता बनना है ये उन धर्मों में कहीं नहीं है। फरिश्ते है, फरिश्ते की बहुत बड़ी कैटेगराइजेशन है। अलग अलग फरिश्तों के अलग अलग नाम है, माइकल, जिब्राइल और उसकी कैटेगरी आर्च एंजल, एक फरिश्ता, फिर उसके एक एक फरिश्ते के अलग अलग कर्तव्य, ये फरिश्ता ये करता है, ये फरिश्ता ये करता है, बहुत सारा वर्णन है फरिश्तों का। परंतु फरिश्ते रहते कहाँ हैं, आते कहाँ से? परमात्मा संदेश वहां पे, यहां तक भी उसमें ज्ञान है, पर वो है कहाँ, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं? भगवान भेजता है परंतु कैसे, वो सब बातें उसमें नहीं है। परंतु फरिश्तों का वर्णन जरूर है। जितने भी प्रोफेट्स, पैगंबर, रसूल, नबी आके गए, उनको कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई फरिश्ते का साक्षात्कार होता है और उनको प्रेरणा मिलती है, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, कोई एक दिव्य वाणी सुनाई देती है जो उनको रोकती है और उनको कहती है ये नहीं ये करो। तो ये सारी, चाहे वो अंत चेतना की आवाज है, अंतकरण की आवाज है या कभी बाहर से आती है, तो फरिश्तों का ज्ञान तो है। आत्मा का ज्ञान भारतीय शास्त्रों में दर्शनों में है, परंतु आत्मा तक आके रुक जाता है। फरिश्तों का नहीं है, देवदूतों का उल्लेख है। देवदूत हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में देवताओं का वर्णन है। ये तीनों ही धर्म में देवताओं का वर्णन है। बाहर के जो तीन धर्म मुख्य है उनमें फरिश्तों का वर्णन है। ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ज्यूस, ये तीनों धर्मों में फरिश्तों का वर्णन है, परंतु देवताओं का ज्यादा वर्णन है। यहूदी, ज्यूश, तो उनमें देव फरिश्तों का वर्णन है। भारतीय दर्शनों में आत्मा का वर्णन है, पर चाहे वो आत्मा का वर्णन है परंतु देहभान से छूटना ये लक्ष्य किसी ने रखा ही नहीं है। वो फरिश्ते आते हैं और अपना कार्य करते हैं, देवताओं का साक्षात्कार होता है, परंतु स्वयं देवता बनना है ये किसी ने नहीं सोचा। देवताओं के लिए तपस्या की जाती है, परंतु उनसे वरदान लिया जाता है, परंतु खुद ही देवता बन जाए ये वर्णन नहीं है कहीं पर। ये इस ज्ञान की नवीनता है, संपूर्ण नवीनता बताई है कि तुम ये बनते हो, जो कहीं पर भी वर्णन नहीं है। सबसे नवीन ज्ञान है ये। तो बाबा कहते हैं अगर ये समान में स्थित रह जाए कि हम ही वो फरिश्ते हैं, तो देहभान स्वतः ही समाप्त तो हो जाएगा। बाबा देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। देहभान के इतने सारे रूप है और उसी में रहने की आदत है, इसके लिए नए नए रूपों से आता है। और ज्ञानी आत्मा तो ये समझती है कि छूटना है, छोड़ने का प्रयत्न भी करती है, परंतु एक छोड़ती है तो दूसरा आता है। जैसे हम कोई झाड़ियों के बीच में से जाते हैं तो एक तरफ फंस जाते हैं कपड़ा, उसको छुड़ाने लगते हैं, जब वो छूटता है तो देखता है दूसरे तरफ से अटक गया, वहां से छुड़ाओ तो कहीं और से अटक गया, वहां से छुड़ाओ तो और अटक गया, ये छुड़ाते छुड़ाते वो नया तैयार हो गया उधर। ये देहभान भी ऐसा है, एक देहभान से छुड़ाने का प्रयत्न किया, एक से छूट गया, देखा दूसरा आ गया, उससे छुड़ाया तो तीसरा आ गया। ये छुड़ाना जो है ये मुश्किल काम है बाबा कहते हैं, परंतु कुछ नया धारण करना वो सहज है। तो बाप दादा कहते हैं कि समान में सदा रहो, जहां समान है वहां देहभान आ नहीं सकता। हायर कॉन्शियसनेस, समान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस, हायर रिमेम्बरेंस, एक ऊंची स्मृति जो कि भक्तों में नहीं है। भक्तों ने सदा ही स्वयं को, अपने को छोटा समझा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। एक रीति से वो भी अच्छा है, उसमें अहंकार नहीं आता है, हम कुछ भी नहीं है, हाँ हीन, परंतु वो समझते हैं संपूर्ण समर्पित है उनके प्रति, परमात्मा के प्रति, कि जैसा वो चलाएगा, जैसा वो कराएगा, जो वो देगा उसमें खुश। परंतु ऐसा सभी भक्तों में देखा नहीं गया, जो सर्वोत्तम भक्त थे, सर्वोच्च द्वापर युग के शुरुआत के या बाद के थोड़े, उनमें ये भावना बहुत ज्यादा थी। परंतु बाद के जो भक्त है, जब भक्ति तमो प्रधान बन गई तो ये भावना इतनी नहीं रही। पहले का समर्पण समग्र समर्पण था, बस उसने अगर वो चाहता है जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, फिर उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो वो करेगा उसी में कल्याण है। घर का सब कुछ लुट गया, उसको पसंद था, उसकी राजी, उसकी रजा उसमें है, तो हम भी उसमें खुश है, ये भावना समर्पण भाव है। परंतु समान वाली बात कहीं नहीं है, देगा भी कौन, भगवान उनसे डायरेक्ट तो बात कर नहीं रहा है, तो वो अपने आप को समर्पित करते हैं उसके आगे, जैसी उसकी इच्छा वैसा होगा। उसका भी था, वो उनको मदद तो करता ही था, हाँ, पर संपूर्ण नहीं था, वो स्वयं को अपने को समर्पित कर देते थे परमात्मा के। हाँ, बाबा जो कहते भावना का भाड़ा मैं उनको देता हूँ, वो तो जरूर था, परंतु समान कुछ और चीज है। समान ऐसी चीज है कि जिसमें अहंकार भी नहीं है, अहंकार नहीं है वो। एक है भक्तों का था इन्फियोरिटी, मतलब वो अपने आप को हीन समझते थे, नीचे समझते थे, बहुत छोटा समझते थे, वो दास का दास, दासानुदास कहा जाता है ऐसे, कि परमात्मा का जो दास है उसका भी मैं दास हूँ, जितना दास के दास रहेगा उतना वो अपने आप को, मतलब इस तरह की भावना रहती थी। एक रीति से वो भी ठीक है, क्योंकि उसी समय समाज में उसी समय कुछ अहंकारी व्यक्ति भी थे जो अपने को भगवान या श्रेष्ठ मानते थे, उनकी तुलना में तो ये ठीक थे। तो बाबा ना तो हीन भावना सिखाता है, ना ही अहंकार सिखा रहा है, एक नई चीज उसने बताई है और उसको नाम दिया है स्वमान, स्वयं को स्वयं मान देना। और वो स्वमान अहंकार को नष्ट करता है, और हीन भावना भी नहीं है, हीन भावना को भी नष्ट करता है, क्योंकि हीन भावना के साथ व्यक्ति ज्यादा समय नहीं जी सकता है, उसमें अवसाद डिप्रेशन आ जाएगा हीन भावना वाली आत्मा में। तो बाबा कहते हैं कि समान में सदा रहो, जहां समान है वहां देहभान आ ही नहीं सकता, क्योंकि देहभान आत्मा से संबंधित है, आत्मा के ओरिजिनल नेचर से संबंधित है, भक्ति से संबंधित नहीं है, परंतु भक्ति का परिणाम जरूर है। लंबा समय भक्ति करने के बाद ही सम्मान मिलता है। दोनों बातें, एक तरफ तो बाबा भक्ति का विरोध करते हैं मुरलियों में कि भक्ति अंधकार है, पर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये भक्ति का ही फल है। एक तरफ तो ये कहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मुरली में आया था, भक्ति का फल जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी उनको जास्ती फल मिलेगा, एक तो ये बात कह दी। अब उसने एक बात ये भी कही है कि भक्ति अंधकार है, ये भी कहा है कि जो भक्ति है, भक्ति का अंत होता है तो ज्ञान शुरू होता है, भक्ति करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, भक्ति करने से तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, पर दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो सबसे पहले आएंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो उच्च पद पाएंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई करेंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो यहाँ आगे जाएंगे, तीखे जाएंगे। आज तो यहाँ तक कहा है बाबा ने, आज की मुरली में लास्ट पैराग्राफ, उन्हें 7 दिन कोर्स करने की भी जरूरत नहीं, 1 सेकंड में तीर लगेगा, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। तो अभी चलो कोई भी भक्ति की हो, पर अभी क्या कर सकते हैं? तो अभी उच्च पद पाने का आधार भक्ति है या आपका पुरुषार्थ? भक्ति, तो भक्ति करनी है वापस, या केवल पश्चाताप हाथ में है कि भक्ति ज्यादा करनी चाहिए थी? बाबा ने क्या कहा है कि जिसने जास्ती भक्ति की है वो यहाँ टिके जाएंगे, जिसने जास्ती भक्ति की है तो अभी अभी क्या करना है? पुरुषार्थ आधार है उच्च पद का या की हुई भक्ति आधार है उच्च पद का? अगर भक्ति की ही नहीं है, स्मृति ही नहीं है, तो जाकर वापस भक्ति करें कि बस पश्चाताप भी हाथ में है कि करना चाहिए था? हाँ वो तो है, पर ये बाबा ने ये भी जो कहा है ना, जास्ती भक्ति जास्ती फल।
कई ऐसे हैं जो भक्ति की नहीं है लेकिन पहले जन्मों में बहुत भक्ति की और अभी बहुत सारे
बाबा ने ज्ञान भी भक्ति है, सत्व प्रधान
भक्ति, ये भक्ति योग भी है, ज्ञान योग का राजयोग का एक नाम भक्ति योग भी है, ये संन्यास योग भी है, ये हट योग भी है, संसार के जो भी योग है इसके लिए जगदीश भाई ने कहा है इसको राजयोग नहीं कहा जाए। बाबा ने अगर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया होता तो शायद अच्छा होता, जैसे संपूर्ण योग कहना चाहिए था इसको, क्योंकि राजयोग कहते हैं तो पतंजलि का यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि आ जाता है सामने, वो आता है। राजयोग कहा ही मतलब कि कोई भी पहले वही सोचता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग कहते हैं उसको, ये अष्टांग योग ही आ जाता है सामने। इसके लिए जगदीश भाई ने लिखा है कि इसको शायद बाबा ने संपूर्ण योग कहना चाहिए था, बाकी इसमें ये सभी योग है, कर्म योग भी है, ये सहज योग भी है, ये समर्पण योग भी है, समत्व योग भी है, जो गीता में सांख्य योग भी है, द योगा ऑफ डिटैचमेंट, योगा ऑफ डिटैचमेंट भी कहा जाता है इसमें,
योगा ऑफ डिटरमिनेशन,
दृढ़ता का योग। तो एक तरफ भक्ति, परंतु भक्ति में वो बातें नहीं है। दूसरा एक समाज है जो अहंकारी समाज है, जो भगवान को नहीं मानता और शायद स्वयं को भगवान समझता है या उच्च समझता है या नहीं मानता है, तो वो एक समाज है, वो भी नहीं और ये भी नहीं, हीन भावना भी नहीं। बाबा ने भरी क्या दिया? समान दिया, ऊंची स्मृति दी, हायर कॉन्शियसनेस दिया, याद दिलाया कि तुम ये थे, तुम वो थे, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, और तुम ही थे और कोई था नहीं,
और तुम्हारे जन्मों को तुम ही तुम कैसे थे तुम नहीं जानते हो,
मैं जानता हूँ, ये गीता का महावाक्य है, हे अर्जुन तुमने कई जन्म लिए हैं पर तुम उन जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ,
तुम्हारा पवित्र स्वरूप मैं जानता हूँ।
तो जहाँ समान है वहाँ देह बना नहीं सकता, तो सारे समानों को याद करना पड़ेगा, मतलब समान की लिस्ट सामने रखनी पड़ेगी। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो लेकिन समान में स्थित रहने का टेंशन रखो, और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे समान प्राप्त है, प्राप्त करना नहीं है प्राप्त है, प्राप्त करने की मेहनत नहीं करो अभी समान मिल जाए, प्राप्त करना नहीं है प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है। तो छोड़ने में बहुत मेहनत है। किसको कहा ये छोड़ो, अभी कैसे छोड़े उसको, पूरा मतलब त्याग और पूरा कितना दुख है कोई चीज छोड़ने में, कोई भी चीज छोड़ने में। अकबर के दरबार में एक बार अकबर ने एक लकीर खींच दी और सब दरबारियों से कहा कि इस लकीर को बिना स्पर्श किए इसको छोटा करके बताओ। तो बीरबल आया, एक बड़ी लकीर खींच दी, हो गई छोटी, वो बिना हाथ लगाए। संसार एक तरफ, कैसे छोड़े उसको, वही बड़ा दिख रहा है, बिना हाथ लगाए वो छोटा हो जाए, परमात्मा को रख दो बाजू में वो स्वतः ही छोटा हो जाएगा। इंद्रिय सुख इतने बड़े हैं, कैसे छोटे उससे, अतिंद्रिय को सुख को रख दो बाजू में वो स्वतः ही छोटा हो जाएगा बिना स्पर्श किए। नहीं तो कोई उपाय ही नहीं है, कैसे उस लकीर को छोटे करे बिना स्पर्श किए। संसार के सुखों को कैसे छोड़े, जिसमें जन्म जन्म गोते खाए हैं, डुबकियां लगाई है और उसी को सत्य समझा है और उसके अतिरिक्त तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि किसी और चीज का ज्ञान ही नहीं। जब ज्ञान मिला है तो उसका अनुभव करो, संघर्ष नहीं करो कुछ भी, कोई झगड़ा नहीं करो, कोई लड़ाई नहीं करो, आंतरिक अवस्था कलह की ना हो, सामने रख दो, वो भी अनुभव किया और ये भी अनुभव किया। अब देखो अपने आप और सोचो, कल कान उमंग में रहना है तो एकांत में जाकर स्वयं से बातें करो। क्या बातें करो, कि ये है संसार के सुख, ये है आज तक जो कुछ किया, अब तक की आपाधापी का ये है निष्पत्ति परिणाम, बहुत भागा दुनिया में भाग दौड़ की, जो कुछ किया उससे ये मिला, और ये है पुरुषार्थ, थोड़ा सा ही किया, ज्यादा भी नहीं किया, अभी अभी कर रहे, और ये उससे मिला है सुख, ये है उस पुरुषार्थ से प्राप्त अवस्था, और अब तक में जो संसार में भागदौड़ की उसकी निष्पत्ति ये है। अब देखो, खुद ही सोचो, ये या ये, तो स्वतः ही जो छोटा है उसको मन छोड़ देगा। छोड़ने का पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना है कुछ भी, उसमें पीड़ा है। धारण करने का पुरुषार्थ, नया ले लेने का पुरुषार्थ करना है। तुरंत सोने के बाद में जो जागृत अवस्था होती है उसमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि सो रहे थे लंबा समय घोर अज्ञान निद्रा में, और उसके बाद अगर कोई जगा दे तो बहुत खुशी होती है, फिर बहुत नशा भी होता है, परंतु वो नशा ही फिर स्थायी रहे, लंबा समय रहने के लिए केवल वो खुशी पर्याप्त नहीं कि हम जाग गए हम जाग गए हम जाग गए, पहले सोए थे अभी जाग गए, पहले सोए थे अभी जाग गए, ये कुछ समय चलेगा, 5 साल तक खींच सकते हो इस नशे को कि भगवान मिल गया भगवान मिल गया भगवान मिल गया। भगवान आकर पढ़ाते हैं, अरे रोज ही पढ़ाता है, मधुबन में आगे मधुबन में आगे मधुबन में आगे, वो धीरे 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 सारा ही कम हो जाता है। मधुबन में है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान वरदान दे रहा है, भगवान बात कर रहा है, ये नशा कब तक चलाओगे। नशे को सूक्ष्म कर देना, वह सूक्ष्म नशा ही समान है। तो अभ्यास करना है समानों का, वो जो नशा था जो कि अल्पकाल का ही रहा, वो उस नशे की सूक्ष्म स्वरूप जो है वो धीरे धीरे वो नशा समान में परिवर्तन हो जाए तो समान लंबा समय टिकेगा। फिर उसमें फिर वो उन्माद था जो पहले आए थे, बहुत एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन था, बहुत ज्यादा नशा था, हम कुछ नहीं कर रहे थे, स्वतः हो रहा था, हमने किसी चीज को छोड़ने की प्रयत्न नहीं किया था, स्वतः ही सब कुछ छूट गया था और स्थिति एकदम ऊपर चली गई थी। पर अब वैसा नहीं होगा, शायद तब परमात्मा की मदद भी थी। हाँ, वो फर्स्ट फेज था जिसमें एंट्री किया था, जिसमें एकदम से लिफ्ट मिल गई, कुछ करना ही नहीं है, बैठो और आशा दे दी, कोई बाकी संसार की सब चीज छोड़ दो, आज भी बोला ना मुरली में, बाकी सब छोड़ दो, वो छोड़ा नहीं था, छूट गया, जैसे पेड़ से पत्ते गिर जाते, स्वतः पेड़ ने नहीं छोड़ा, पेड़ को भी नहीं पता चला वो पत्ते कब गिर गए, पत्तों को भी नहीं पता चला हम कब गिर गए, विकारों को और आलस्य और अलबेलापन ये सबको पता ही नहीं चला कब वो हमसे दूर हो गए, परंतु वो फिर आएंगे। वो तो फर्स्ट फेज था ज्ञान का, जिसमें ईश्वरीय मदद थी, पर हमेशा ही वैसा नहीं रहेगा, हमेशा फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर गिरना चालू होगा, पहले माँ पकड़ पकड़ के चलती है बच्चे, थोड़ा उसको लगा फिर छोड़ देती है, फिर वो गिरते रहते हैं, क्योंकि उसको उस माँ को उस बच्चे को शक्तिशाली बनाना है। कैसा बनेगी? कि हमेशा ही पकड़ के चलेगी? उसे तो युद्ध में भेजना है, उसका जन्म युद्ध के लिए हुआ है। अपने सामान की लिस्ट निकालो, दूसरों ने निकाल रखी है वो काम नहीं आएगी। दूसरों तरफ से कहीं कहीं से मेल आ चुके हैं सामान की लिस्ट की, वो नहीं। एकांत में बैठ के निकालो, सोचो क्या क्या दिया है। केवल याद करने की बात है, पता सब कुछ इधर है सब, परंतु हम कैसे याद करते हैं? सामान की लिस्ट मतलब किसी से ले लेते हैं, सामान की लिस्ट दे दो और देख लिया, एक बार दो बार देख लिया, पढ़ लिया, हो गया खत्म। वो नहीं, सामान की लिस्ट निकालो अर्थात मन में रिवाइज करो उन सामान को। आज क्या सामान दिया, या मुझे क्या क्या सामान याद है? भीड़ में नहीं, एकांत में, स्थूल एकांत में। ऐसा एकांत की जहां मनुष्य की आवाज ही ना आए, उस एकांत के पास जाओ, केवल प्रकृति की आवाज हो, केवल हवा की आवाज हो और ये चिड़ियों का चहकना हो, उस केवल वो झरने हो, कल कल निनाद करते वो नदी हो, उस प्रकृति के सानिध्य में जाकर ही ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन किया जा सकता है। कमरे में बैठकर नहीं, हो सकता है ऊंची अवस्था होने के बाद, शुरुआत में नहीं। ऊंची अवस्था में तो कहीं पर भी चिंतन कर सकता है, होटल में, दादर रेलवे स्टेशन में, कहीं पर भी खड़े रह के ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन किया जा सकता है। पर पौधा जब छोटा होता है उसे बहुत तरह से उसकी रक्षा करनी होती है। ऐसी जगह कि जहां मनुष्य की आवाज ही ना हो, पदचाप भी सुनाई ना दे किसी की, केवल प्रकृति का सानिध्य, ऐसे स्थान पर ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन में रहना। जो कल कहा ना, स्वयं को उमंग में कैसे लाओगे? किसी का लेक्चर सुनकर, कोई किताब पढ़कर, वो भी है, परंतु सर्वोच्च उपाय है, सर्वश्रेष्ठ औषधि जो है वो है एकांत, प्रकृति का सानिध्य। महान कवि, महान दार्शनिक, महान रहस्यवादी जितने संसार में हुए, वैज्ञानिक, सबको प्रकृति से प्रेम था। जो काव्यों की रचना कालिदास और अंग्रेजी के जो भी महान कवियों ने की है, वो सब प्रकृति, नेचर पोएट्स उनको कहा जाता था, नेचर पोएट्स। तो सामान की लिस्ट निकालो, मतलब स्वयं को याद दिलाओ, मैं कौन हूं। कितनी बड़ी लिस्ट है, कितनी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, ये स्वयं को आश्चर्य करे जब हम याद करने का प्रयत्न करें। कैसे निकालोगे लिस्ट? अ आई से चालू करना, अ से क्या क्या बोला है, अकाल मूर्त, ब से क्या बोला है, क से क्या बोला, ख से क्या बोला, क्या क्या कौन कौन सी लिस्ट है, प से क्या क्या बोला है हमारे सामान वो भी समान है। इस तरह से जैसे ए बी सी डी होती है ना, अ आ ई ई अ, इस तरह से एक 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 लो। हमने एक बार हमारी क्लास में इस तरह से किया था, वो लिस्ट तो सामने थी, ये अ से लेके तो पूरा आखिरी तक, चलो अ से क्या क्या है, तो सबने, किसी ने कुछ सुना है, किसी ने कुछ, ब से क्या क्या सामान है, सबने सुना है, क से क्या क्या सामान है, वो सुना। तो ये एक विधि है, एकांत में बैठो और सोचो, एक शब्द ले लो, क, प, फ, ज, ट, जो भी ले लो, एक वर्ड ले लो और उससे क्या क्या सामान निकलते हैं। म, अभी म आया तो बहुत सारा आ जाएगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अभी मास्टर से और क्या क्या है वो याद करो। याद तो बहुत है, किताबें बहुत लिखी हुई है, सबने लिख के रखा है किताबों में, मास्टर सर्वशक्तिमान ये वो लिखा है, वो उन्होंने लिखा है, वो उनका चिंतन है, हमारा थोड़ी बना। आंतरिक स्वीकृति फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, दो स्टेजेस है, एक है स्वीकृति अंतर मन उसको रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर से कह रहा है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अंदर से कह रहा है ये मेरे से नहीं होगा, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। अंतर चेतना उसको रिजेक्ट करके फेंक रही है बाहर, बहुत ही जोर से एकदम ऐसा किक लगाती है। हाँ ऊपर से कहते हैं कि मैं विश्व कल्याण कर, एक अंदर से किक लगा के दूर फेंक देती है उस सामान को, सबकॉन्शियस माइंड वो सामान याद रिजेक्ट कर देता है अंतर मन। अभी अंतर मन को हमारा खेल अपने मन के साथ है। अभी किसी ने क्लास करा दिया, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत अच्छा है, हमको क्या फायदा, कनरस है वो, केवल भक्ति है बस। अगर वो किसी क्लास अच्छा लगा तो समझ लेना वो भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति मात्र है और कुछ नहीं है। यहाँ मरना पड़ता है, बाबा ने कहा मरना पड़ता है, भक्ति नहीं है ये। एकांत में बैठकर याद करो, उसको देखो, उसको निहारो, उसको मन की आंखों से देखो। आकाश में लिखा हुआ देखो वो समान, बड़े बड़े अक्षरों में, अग्नि के अक्षरों में, जितना वो स्पष्ट दिखाई देगा, और उसमें रंग भरो अलग अलग, कभी लाल कभी पीला कभी नीला, अलग अलग रंग भर के मन की आंखों से स्पष्ट देखना कि ये हम है, तो उसमें स्थित हो सकेंगे। नहीं तो मन कहां स्वीकार ही नहीं करता है ये सब बातें जो चल रही है, हवा में चल रही है सर ये जो बातें चल रही है, एक तरफ सुबह की मुरली हो गई और दिनचर्या, एक तरफ दिनचर्या में संघर्ष ही संघर्ष है, षड्यंत्र है हमारे आसपास चारों तरफ, जहां जाओ वहां षड्यंत्र, इतने षड्यंत्रों में घिरे हुए हैं हम कि ये ज्ञान तो केवल सुबह की ताय समय था बस, बाकी तो इसका कोई नाम निशान नहीं है दिनचर्या में। तो इसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। ये जो लिस्ट निकालने की बाबा बात कर रहे हैं, ये सब एकांत में किया जाता है, अध्यात्म एकांत में ही संभव है, उसके सिवा नहीं। भीड़ भड़ाके में अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती है। आप इस संगठन का अपना महत्व है, परंतु संगठन जैसे अभी हम बैठे हैं और चिंतन कर रहे, पर इस चिंतन के पीछे कुछ एकांत में हुआ है तो कहीं जहां चिंतन हो रहा है। जो मुख्य कार्य किया गया है वो एकांत में किया गया है, अभी तो केवल उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, ये मुख्य नहीं है। जो सोचा गया है, जो चिंतन किया है और जो बोला जा रहा है बहुत कम है उसकी तुलना में। सोचा जो गया है वो बहुत ऊंचा है, वो तो शब्द कम पड़ रहे हैं, शब्द में समाया नहीं जा सकता है वो, परंतु वही स्थिति का आधार है। जो बोला जा रहा है और जो सुना जा रहा है वो स्थिति का आधार नहीं है, जो हुआ है उधर बैकग्राउंड म्यूजिक, जो बैकग्राउंड में हुआ है वो स्थिति को ऊपर ले जाता है। कितनी बड़ी लिस्ट है, सारे कल्प में कितने भी समान अर्थात टाइटल किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता के, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके समान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। किसी एक अभिनेता को ले लो और उसको जितने अवार्ड्स मिले, उसकी किसी की भी बायोग्राफी देखो, अरे बाप रे बाप, फिल्म फेयर अवार्ड, ये अवार्ड, इधर अवार्ड, उधर अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ऐसे कितने अवार्ड्स रहते हैं उनको, बहुत सारे अवार्ड्स, विदेश से कोई अवार्ड, इधर से कोई अवार्ड, उधर से कोई, राजनेता बहुत सारे अवार्ड, पीस प्राइज, ये प्राइज, वो प्राइज। मदर टेरेसा को जब वो नोबेल प्राइज मिला तो एक साल तक उसका सम्मान ही होते रहा, भिन्न भिन्न जगह, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, एक प्राइज मिल गया मतलब उसके बाद में सब सभाएं होती रहती है। बड़ा कोई प्राइज अगर मिल गया वहां पर माया चालू होती है, प्राइज लेने में माया नहीं है, पर उसके बाद जो चालू होता है वो सब माया ही माया है। तो उनको चाहे कितने भी हो, चाहे राजनेता, अभिनेता, नामी ग्रामा, कितने भी नामचीन कोई आत्मा हो और उसको बहुत कुछ मिल गया, पर हमारे सामने कुछ नहीं है, बाबा कहते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा समान की स्मृति दिलाते हैं, समान में स्थित कराते, और रोज भी एक नए ते नया समान स्मृति में रखो तो समान के आगे देह भान ऐसा भाग जाता है जैसे जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाने का क्या इलाज है, कोई इलाज ही नहीं है। कैसे भगाए, क्या लड़ाई करे उससे, कितनी लड़ाई करे उससे, सारे हमारे हथियार फेल हो गए, वो जाता ही नहीं। कितना बलशाली शक्तिशाली है, उसको भगाने का एक ही उपाय, प्रकाश और ना समय लगता है ना मेहनत लगती है। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल, काला काला बादल, कौन सा काला बादल, सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास क्या है? ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसकी लिंक, किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाता है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी भी पावरफुल, कितनी पावरफुल होती है, डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट? सभी का डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिली हुई है। फिर भी, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। तो चाहे कितने भी बादल आ जाए वो सब, स्वमान का लाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया और अंधकार समाप्त। तो आज सारे दिन भर क्या स्वमान में लू, क्या स्वमान दिए गए, उनको याद करने का प्रयत्न। कहीं से पढ़ो नहीं, बैठकर एकांत में अपने मन को याद कराओ कि क्या समान दिए हैं। बस अच्छा, ओम शांति।